जय गुरुदेव जय गुरुदेव
जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम अशरण शरण शरण प्रभु ले
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
गुरु राखहिं जो को पविधाता
गुरु राखहिं जो को पविधाता
गुरु रूठे नहीं को जग त्राता
गुरु रूठे नहीं को जग त्राता
गुरु के वचन प्रति तन जाई
गुरु के वचन प्रति
शुभ मन सुख सिद्धि ताई
सपने मन सुख मन सुख सिद्धि ताई
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव
मूर्ति पूजा वेद्य है कि अवेद्य है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यह है प्रश्न। पूरा विश्व मूर्ति पूजक है, पंचभूतों से निर्मित किसी आकार पर श्रद्धा स्थिर करना मूर्ति पूजा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, पुस्तक, आकाश इत्यादि सब मूर्ति पूजा के अंतर्गत हैं। भारत में सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, किंतु भारत मूर्ति पूजक नहीं है। सबसे ज्यादा मूर्तियां हैं, मंदिर है, किंतु भारत मूर्ति पूजक नहीं है। ये आध्यात्मिक देश भारत है। अध्यात्म की प्राइमरी कक्षा है ये मूर्तियां। जन्मते ही छोटे बच्चों को माताएं कहती हैं, पिता को प्रणाम कर, ये बड़े भैया प्रणाम कर, कुल देवी, वन देवी, हर ताखे में भगवान का कोई न कोई चित्र है, वहां प्रणाम कर, अगरबत्ती जला, तुलसी को प्रणाम कर, पीपल को प्रणाम कर, आस्ते आस्ते गंगा इत्यादि पवित्र नदियां, सूर्य चंद्र इत्यादि नक्षत्र सर्वत्र प्रणाम कराती। वो बच्चे जिससे कि आध्यात्मिक संस्कार उसमें पड़ जाए, वो ये समझ लें कि कोई शाश्वत सत्ता है जो सक्षम है, वो हमें शक्ति देती है केवल संस्कार डालने के लिए। जिन महापुरुषों ने भजन की पूर्ति काल में जिस सत्य को पाया, वो परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में व्याप्त पाया, इसलिए जर्रे जर्रे की ओर भी उन्होंने प्रणाम करवाया। वही बच्चा आस्ते आस्ते जब 18-20 साल का होता है, तब वो चिंता में पड़ता है कि भगवान एक हैं या अनेक, भगवान एक हैं कि अनेक, हम भजन किसका करें। तब बड़े बड़े विद्वानों से मिलता है, फिर वो तीर्थों में बड़े मंदिरों में जाता है, संतों से भेंट करता है, और जहां कोई महापुरुष सद्गुरु मिल गए तुरंत साधना क्रम समझता है, फिर शांत एकांत झाड़ियों में, खंडहरों में, कुटीरों में वो पाया जाता है। वो कट्टर मूर्ति पूजक फिर लौट के कभी मंदिर में नहीं जाता। था तो कट्टर मूर्ति पूजक, लेकिन जहां साधना सही दिशा पकड़ लिया तो फिर एकांत शांत वन स्थलियों में पाया जाता है। इसलिए भारत में मूर्ति पूजक नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक देश भारत की आध्यात्मिक कक्षा है। ये मूर्ति है जिसमें कि श्रद्धा का सृजन हो जाए हर बालक में, बच्चे बच्चे में। और इस प्रकार आत्मिक संस्कार प्रदान करने के लिए पूर्वजों ने इतनी सूक्ष्म शोध की कि गर्भाधान संस्कार। बालक गर्भ में होता है तभी सुनता है, समझता है और आचरण में ढलता है। अभी एक सज्जन आए तो मात्र 2.5 साल का बच्चा, 2.5-3 साल का, पूरा शिव स्तोत्र पढ़ ले गया। वो रहा होगा 3 बिलस्त का, पूरा शिव स्तोत्र और बिल्कुल विशुद्ध पढ़ ले गया संस्कृत में। हमने कहा लड़कों की जिंदगी चौपट कर दिया तुम लोगों ने, पढ़ाओ पढ़ाओ। अरे ये खेलने खाने की उम्र है कि मार डाला रटौत रटौत? बोले नहीं महाराज, हमने नहीं रटाया। ये जब गर्भ में था तब मैं रोज बैठ के दोनों मीटिंग ये स्तोत्र पढ़ा करता था इसकी माता के पास बैठ के, भली प्रकार तल्लीन होकर वो सुनती भी थी। ये जन्मते ही पहला सूत्र यही पढ़ने लगा, अपने मन से पढ़ रहा है। नहीं, नमामि शमी सन निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। खैर वो बच्चा ई पढ़ रहा था। हाँ, अब और अंत में जो एक श्लोक है उसको भी पढ़ा उसने, तो बोले महाराज बगैर सिखाए ही पढ़ रहा है। अभिमन्यु पेट में था, महाभारत युद्ध छिड़ गया जब उसकी उम्र 16 पार कर गई थी। सब चिंतित की चक्रव्यू वेदन कैसे हो। बोले पिताश्री 6 फाटक तो मैं भली प्रकार तोड़ दूंगा, लेकिन 7वीं का मुझे ज्ञान नहीं, मैंने ये गर्भ में सीखा। एक अष्टावक्र हुए हैं जिनका वो उधर में ही थे, उनके पिता बड़े प्रकांड विद्वान वेदों के थे, निरंतर वेद पढ़ाया करते थे उसकी माता को, और वो तल्लीन होके सुन रही थी। जन्मने में 1-2 दिन बाकी था कि वो लड़का वो पढ़ा रहे थे। लड़का बोला पिताजी अशुद्धम, ये सूत्र ऐसे नहीं ऐसे। बोले ओ इतना टेढ़ा, जन्मा भी नहीं और तब भी मुझे चैलेंज कर रहा है। विद्वान थे, विद्वानों में एक दोष भी होता है, और जब वो अपने कमजोरी नहीं सहन कर पाते, वो ये भूल गए कि गर्भ वाला शिशु बोल रहा, तुरंत श्राप दिया कि जाओ तुम 8 अंगों के टेढ़े हो जाओ। भला इतना टेढ़ा, जन्मा तो टेढ़ा, किंतु बड़े होने पर अष्टावक्र चले गए। अष्टावक्र के पिताजी जनक की जेल में, तो अष्टावक्र नहीं जाके छुड़ाया, वास्तव में महापुरुष थे। इसलिए गर्भाधान में भी बच्चे सीखते हैं। यहां से पूर्वजों ने उस एक परमात्मा का संस्कार देना शुरू किया, फिर जन्मना संस्कार, मुंडन संस्कार, इस प्रकार 16 संस्कारों में केवल एक बात बताई जाती थी कि सहस्र शीर्षा पुरुषा, वो परमात्मा अनंत हाथ पैर मुख वाला है, उसके तेज के एक अंश मात्र से सृष्टि का सृजन पालन और परिवर्तन है। पूर्व महर्षियों ने उसी एक परमात्मा को मानस यज्ञ के द्वारा प्राप्त विदित किया। ब्रह्मा ने जिनका ध्यान धरा, इंद्र ने जिनकी स्तुति की, वही एक शक्ति है, उसे धारण करो। इतना ही कर्म कांड में बताया जाता है। कांड माने होता घटना, जन्म एक घटना है, शादी भी एक घटना है, नींव पड़ गई घर की तो भी एक घटना है, मकान तैयार हुआ गृह प्रवेश किया तो भी एक घटना है। हर घटना पर पहुंचकर पुरोहित ये बताता है कि ईश्वर एक है, कणकण में व्याप्त है, उसके तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन है। पूर्व अनादि काल के महर्षियों ने उसी एक नित्य सत्य को प्राप्त किया है, वो भी मानस यज्ञ के द्वारा। इसलिए ये प्राइमरी पाठशाला है, किंतु जहां और वही बालक जब सयाना होता है तो शने शने तीर्थों में, विद्वानों में, सत्पुरुषों में होते हुए जब समझ कोई तत्वदर्शी महापुरुष मिले, साधना जहां जागृत हुई तो एकांत सेवी हो जाता है। बुद्ध मूर्ति पूजक थे, किंतु जितना बुद्ध ने खंडन किया मूर्ति का उतना किसी ने नहीं। महावीर मूर्ति पूजक थे, सारे धर्म कर्म जैसे आप करते हो वैसे ही करने वाले थे। गृह परित्याग के पूर्व 1 वर्ष तक 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा का दान रोज किया उन्होंने ब्राह्मणों को। यदि जैन कोई अलग धर्म होता तो ये ब्राह्मणों को दान क्यों दे रहे? वही जो परंपराएं हैं, दान पुण्य की परंपराएं, ज्यों का त्यों निर्वाह किया। किंतु जब बोध साधना में प्रवृत्त हुए, लौट के मंदिर कभी नहीं गए। वो एकांत शांत झाड़ियों में मिलने लगे, खंडेरों में चिंतन रत मिलने लगे। भरत, जड़ भरत इसी दशा में था, और हर महापुरुष, क्या हमारे गुरुदेव सब इसी दशा में थे? भारत में जितने होने वाले महापुरुष इसी अवस्था से गुजरे। और जैसे प्राइमरी के छात्र के लिए कै माने कबूतर, कै माने खरगोश, गै माने गधा, ए माने एप्पल, जितने हर अक्षर को समझाने के लिए बड़े बड़े चित्र, मार चित्र ही चित्र, चुन्नी मुन्नी भेड़िया झपटा, चुन्नी ने डंडा मारा, भेड़िया भागा, व्यर्थ की बकवास। वही बच्चे जब मिडिल में पहुंचते हैं तो महाराणा का भाला और चेतक, अकबर के साम्राज्य का क्षेत्रफल, कुछ ऐतिहासिक बड़े बड़े चित्र। वही छात्र जब एमए शोध कार्य में पहुंचता है, एक चित्र नहीं, बड़ी बड़ी पुस्तकें उलट देता है, कोई चित्र नहीं, कबूतर है न एप्पल है। क्यों? उस उन शब्दों के, उन चित्रों के माध्यम से उसको जो फिगर रटाना था वो रटा लेगी। वर्ण पकड़ में आ गया तो फिगर बेकार, व्यर्थ। आप देखते हो क्या माने कबूतर होता है क्या? कभी नहीं। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक देश भारत है, ये मूर्तियां सब प्राइमरी कक्षा और उपयोगी है, किंतु जन्म भर कोई मूर्ति ही प्राइमरी ही पढ़ता रहे, आपका बच्चा कै माने कबूतर, कै माने खरगोश, 20 साल में, 60 साल में, 80 साल में, मरने की घड़ी तक आपका बच्चा पढ़ता रहे माने एप्पल, तो क्या वो पढ़ता है? कुछ नहीं। इसलिए ये उचित है, किंतु जन्म भर और उचित नहीं है, आगे भी कक्षा है। तो मंदिर जाना उचित है, लेकिन जन्म भर जाना उस साधक की कायरता है, कमजोरी है। स्कूल पढ़ना उचित है, लेकिन जन्म भर पढ़ना अनुचित है। कमाओ खाओगे कब? किस लिए पढ़ रहे थे? इतना ही है उपयोग। फिर पूरे भारत विश्व में दृष्टि डालो, भगवान के मंदिर तो अरबों बने, लेकिन भगवान की प्रतिमा एक भी नहीं। क्यों? कि जिन देखा शो कहा नहीं, कहा शो देखा नहीं, रही मन यगम बात के, कहन सुनन के नहीं। जिन्होंने देखा कहा ही नहीं, और जो कहता है वो कह, उस बेचारे ने अभी देखा नहीं, अगम्य है, कहने सुनने की बात नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं वो अचिंत्य है, अगोचर है, इंद्रियां और इंद्रियों से देखने में आती वहां तक भगवान नहीं, मन और बुद्धि जहां तक निर्णय कर लेती वहां तक भगवान नहीं। इसलिए इंद्रियों का दमन और मन का समन करके ही महापुरुषों ने उस नित्य सत्य को पाया, वो भी अनुभव की आंखों से। कबीर कहता है, आदि शंकराचार्य ने कहा, अनिर्वचनीय वाणी से निर्वचन नहीं किया जा सकता, वाक्य से व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम प्राप्त कर लोगे। उपाय सुगम कर पर भिक्षा तरतुरवासा भज गोविंदम, मूढ़ मते भज गोविंदम। रे मूढ़ बुद्धि, तू भजन कर, कर पर भिक्षा करने को मिले, वृक्ष के नीचे निवास करने को मिले तो करो, किंतु भज गोविंदम, हर परिस्थिति में भजन कर तू। यही एक उपाय बताया। कबीर ने कहा, जब दर्शन हुआ तब कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। भगवान का सहज प्रकाश को लाली की संज्ञा दी, उस मेरे लाल की लाली, स्वाभाविक सहज प्रकाश, जित देखो तित लाल, और जहां लाली का स्पर्श करने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, उसी में समा गया। पूज्य महाराज जी कहें कि नमक की पोटली समुद्र का था लेने गई, वो समुद्र ही हो गई, घुल गई उसी में, लौट के संदेशा कौन दे। हर महापुरुष का निर्णय एक। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान तुम्हारी कृपा से कोई कोई विरला पाता है, जब पाता है तो भगवान है कैसे, कि तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, माना कि कोई कोई पाता है तो भगवान कैसे, कि जानत तुम ही होई जाई, तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है, सेवक सदा के लिए खो जाता है, सेवक सदा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बच रहता है। भला ये संभव कैसे हुआ, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किशोर शरी मिले सो पावन कैसे, इस यानी सही अंतर जैसे। एक बूंद गंगा का जल है, नाम बूंद भर है, और कहीं गंगा से स्पर्श करा दिया जाए तो बूंद भर नाम रहेगा कि गंगा। गंगा का धारा प्रवाह तो सबको दिखाई पड़ेगी, बूंद तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी वो बूंद। ठीक इसी प्रकार साधना के सही दौर में पढ़कर क्रमशः उत्थान करते करते जहां उस मूल परम तत्व का स्पर्श किया तो विशुद्ध उसी का अंश था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जहां अंशी का स्पर्श किया तो तुरंत जानत तुम्हें हो जाई, उसी में मिल गया। अधिक था उसका नाम नेशन बचा रहता है, कम था उसका मिट गया। यही है सहज स्वरूप की प्राप्ति, केवल पद। इसलिए भगवान के मंदिर तो बहुत बने, ले प्रतिमा किसी में नहीं। तुलसीदास जी ने एक बढ़िया रूपक दिया। माता पार्वती ने प्रश्न किया कि राम कौन, रामत सोअवध नेपत सुत सोई, की अज अगुणे अलख गति कोई। राम वो जो राजा का लड़का, या अलख अविनाशी कोई और, जो नृपत ने तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा निरखी, भ्रमित बुद्धि अति मोरी। यदि राजा का लड़का तो फिर ब्रह्म कैसे। एक स्त्री के मोह में हाय सीते खपतुल आवास, कभी पेड़ों से पूछता कभी लताओं से, क्या पहले भी कभी इन्होंने बातें की थी क्या। और देख चरित महिमा निरखी, भ्रमिति बुद्धि अति मोरी, हमें चरित्र देखा, जिधर ताकता था कभी मृगों के पीछे, कभी पेड़ों से पत्तियों से पूछ रहा था, और कुछ महिमा देखी, जिधर देखा राम लक्ष्मण और सीता को खड़ा पाया, आंखें मूंद ली तो हृदय में खड़ा पाया। इसलिए मुझे मेरी बुद्धि में एक भ्रम है। भोलेनाथ पहले तो बिगड़ खड़े हुए, फिर ध्यान धर के देखा, और बोले पार्वती ये तुम्हारा तो प्रश्न ही नहीं है, तुम्हें कोई संदेह नहीं, किंतु संसार का प्रश्न अवश्य है, जगत हित के लिए तुमने प्रश्न किया है, तो सुनो। आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप निगमे अस गावा। आदि माने जन्मा कब से, अंत जिएगा कब तक, ये तो कभी कोई नहीं पाया, लेकिन अपने विवेक के अनुसार वेदों ने इस प्रकार गायन किया है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। बगैर पैरों में से वो सर्वत्र चलता है, बगैर हाथों के वो सर्वत्र काम करता है, बगैर तन के इस और बगैर कानों के सर्वत्र सुनता है, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बगैर शरीर के सर्वत्र स्पर्श करता है, बगैर आंखों के सर्वत्र देखता है। अस सब अब बुलाओ फोटोग्राफर कि यहां कोई देख रहा, फोटो खींचो, खींच लेगा कोई, यहां चल रहा है, चल आप चित्र खींच के दिखाओ। बगैर शरीर के स्पर्श करता है। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुन जाय नहीं बरनी। लौकिक माने जो सृष्टि में है, अलौकिक माने जो सृष्टि से परे करनी है, जिसकी जिसकी महिमा वाणी का विषय नहीं, अनुभव गम्य है। अंत में निर्णय लिया कि जेही मिगा वही वेद बुद्ध, जाहि धरे मुनि ध्यान, शो दशरथ सुत भक्त हित कौशल पति भगवान। जिसको इस प्रकार वेद और विवेकी पुरुष प्रत्यक्षदर्शी महापुरुष गायन करते हैं, मुनि लोग जिसका ध्यान करते हैं, वो है दशरथ सुत और भक्त का हितेशी, कौशल का स्वामी भगवान। मुनि लोग किसी मूर्ति का ध्यान नहीं धरते, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं जो बगैर पैर के चलता है, बगैर आंखों के देखता है, हर तरीके से अलौकिक करनी है, जाय धरे मुनि ध्यान, मुनि लोग उसका ध्यान धरते हैं। इसके विपरीत कदाचित ध्यान धरते तभी मुनि ही नहीं, वो है दशरथ सुत। वास्तव में रामचरित एक मानस है, मानस मन को कहते हैं, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रसारित हैं, हैं सब में, दिखाई नहीं देते। बारीकी से मन का विश्लेषण करोगे तो काम के चरित्र, लोभ मोह के चरित्र, राग द्वेष के चरित्र दिखाई पड़ेंगे, राम के तो नहीं पड़ते। अब ये प्रसुप्त रामचरित्र जिस प्रकार जागृत होते हैं, हैं सब में, ये जिस प्रकार जागृत होते हैं, वो विधि इस रामायण में अंकित है। ये पूरी की पूरी रामायण एक मानस से आपके मन के अंतराल में प्रसुप्त राम की जागृति और राम पर्यंत दूरी तय करा देने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका नाम है मानस। तो दसों इंद्रियों की निरोधमयी प्रवृत्ति ही दशरथ, विषयों में तो निरोध होगा नहीं, क्यों, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई और इच्छा भड़क जाएगी। जब भी निरोध होगा तो भजन से होगा, भगवान के सुमिरन से होगा। सुमिरन में श्रद्धा की डोरी ऐसी लग जाए कि दसों इंद्रियां संयमित होके एक दिशा में इष्ट की और जिस क्षण प्रवाहित हुई राम प्रकट हो जाएंगे। भक्त हित, भक्त वही है जो संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाएं समेट के एक हरि का सुमरण करे, वो भक्त का हितेशी है। कोष कहते हैं आत्मिक संपत्त को, जो निज धन है, एक बार प्राप्त हो गया तो निश्चय ही मुक्ति देके दम लेता है। उस संपत्ति का जो मालिक है वो है भगवान, इसलिए भगवान की मूर्ति तो बनी ही नहीं, वो अनुभव गम्य है। भगवान जब आप में दृष्टि बनकर खड़े हो जाएं सामने स्वयं, तभी वो देखने में आता समझ में। इसलिए मंदिरों में मूर्ति की तो कभी स्थापना हुई ही नहीं, प्रश्न तो ये था। इसलिए भगवान के मंदिर अवश्य बने, किंतु भगवान की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं है, कहीं भी नहीं है, हो भी नहीं सकती। जो बगैर पैर के चलता, अलौकिक ही जिसकी करनी है, जिसने जाना उसी में समा गया, लौट के कहा ही नहीं, कहा तो अनिर्वचनीय है। कहे कबीर गूंगे की शक्कर खाई सेव पे जाने। गूंगा जब शक्कर खाता है तो सिर हिलाता है, मुस्कुराता है, लेकिन बता नहीं सकता कि ये नमकीन टेस्ट से खुश हो रहा है कि मिठास से। अनिर्वचनीय अनिर्वचनीय है। इसलिए जितने भी मूर्ति है वो महापुरुषों की है। सब जो परमात्मा का स्पर्श करके परमात्मा भाव को जो प्राप्त हो गए थे उन कैवल्य पद प्राप्त परमात्मा स्वरूप महापुरुषों की है, परमात्मा की ही है। वो परमात्मा स्वरूप है और चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे नानक हो, चाहे बुद्ध हो, सब उनकी है। उनकी जो महापुरुष एक बार सृष्टि में आ जाता है उस स्वरूप से कोई स्मरण करता है तुरंत प्रेरणा देंगे कि वो स्वरूप कभी मरता नहीं। पूज्य महाराज जी कहे हो मैं मरी हूं ना, कोई गोली मार देगा तो शरीर तो छूट जाएगा किंतु मैंने मरी हूं। अपने सूक्ष्म स्वरूप से सदैव यहां विद्यमान रहूंगा, जो जहीं भी पुकारेगा मैं वहीं उसको मदद करूंगा, उसका कल्याण करूंगा। हमने पूछा महाराज गोली से मरने में, शरीर छोड़ने में, बुखार से शरीर छोड़ने में अंतर क्या है? बोले हो कोनो न कोनो बहाने से शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा। बड़े बड़े अवतार हुए, ऋषि महर्षि हुए, आज किसी का शरीर तो नहीं दिखाई देता। इसलिए किसी न किसी बहाने से त्यागना तो पड़ेगा। हम चिंता में पड़ गए कि महाराज को गोली कौन मारेगा, एक दिन बिगड़े। तुम लोग बात क्या कहते हो, गोली मारते हो? तो हम सोचे हम लोगों से हमसे कोई भूल हो रही है, बिल्कुल चुप एकदम। तब सोचा इसको कष्ट हो रहा है, तब बोले तुम लोग गोली मार रहे हो, और ठीक पांचवें दिन शरीर छोड़ दिया। एक बहाना। और इतने में एक पंडित आए, बोले पंडित तुम आपकी भी बुढ़ोती हमारी भी बुढ़ोती, जो तीर्थ व्रत करना कर लो, अब शरीर का कोई ठिकाना नहीं, तुम लोग बैठा देख भर रहे हो, है भर नहीं, मैं यहां नहीं हूं आसन पर, शरीर से नहीं हूं स्वरूप से सदा रहूंगा। अत्रि महाराज भी आज हैं, हर महापुरुष आज हैं। श्रद्धा से स्मरण करोगे वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, किंतु जब भली प्रकार भजन की प्रशस्त पथ पर आओगे तो वर्तमान में जो महापुरुष उसी स्थिति वाले होंगे भगवत्ता को प्राप्त, वो करुणा करके उन महापुरुष से संबंध जोड़ देंगे, उनकी गोद में फेंक देंगे। इसके बाद में सदगुरु वर्तमान है, सदगुरु मिले जाए जिमि संशय भ्रम समुदाय, संदेह और भ्रम का समूल नाश हो जाता है और साधना फिर प्रशस्त पथ पर आ जाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ये प्राइमरी क्लास है, वो मूढ़ बुद्धि अविवेकी जन अन्य अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। जिनकी पूजा करते हैं वहां देवता नाम की कोई सक्षम सत्ता होती ही नहीं है ही नहीं, किंतु मैं सर्वत्र हूं। इसलिए जहां मनुष्य की श्रद्धा पेड़ में, पौधे में, खंभे में, आकार में, कहीं भी मूर्ति में टिक गई, उसकी आड़ में खड़ा होकर मैं ही उसकी देव श्रद्धा को पुष्ट करता हूं, फल का विधान करता हूं, फल भी तत्काल मिलता है, किंतु भोगने में आता है और नष्ट हो जाता है। जब फल मिलता ही है तो हर्जा क्या, करो ना पूजा। इस पर कहते हैं अर्जुन देवताओं को पूजने वाले मेरी ही पूजा करते हैं किंतु अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जब पूजा ही करनी है तो विधि पूर्वक क्यों नहीं करते हो? ऐसी पूजा किस काम की? बोनस तो मिला और घर पहुंचते पहुंचते झोला खाली, मनी बैग खाली। जब श्रम ही करना तो उस ढंग से क्यों नहीं करते हो कि वो नष्ट न हो, सदा हमारा साथ दे? इस पर कहते हैं किंतु अर्जुन हां वो विधि है नियत कर्म, गीतोक्त कर्म, एक आत्मा ही परम पूज्य सत्य नित्य सनातन तत्व है, भगवान है, उसको पाने की एक नियत विधि है, उसका नाम यज्ञ है, और सो यज्ञ को चरितार्थ करना, कार्य रूप देना कर्म है, वो नियत कर्म है, एक निश्चित विधि है। मनुष्य शरीर मिला तो आपका दायित्व उतना ही है, इसलिए कार्यम कर्म है, मदर्थ कर्म वो केवल मेरे निमित्त कर्म है, मेरी प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार निष्काम कर्म कामना रखोगे तो कुछ दिन उसमें भरमना पड़ेगा, कामना इसलिए कामनाओं से रहित होकर ही मेरा चिंतन कर, कामना कर केवल माभिच्छा तुम धनंजय, मेरी प्राप्ति के लिए इच्छा कर, इतनी ही कामना कर, मैं रहूंगा तुम्हारी सारी सुख सुविधा रहेगी, बस। इसलिए आस्ते आस्ते देव पूजा भगवानी की है, लेकिन जहां थोड़ा स्तर उठा तो भगवान उसको छुड़ा के अपने में डाल लेते हैं। नियत विधि है गीता, इससे करना चाहिए। तो साधक आप ये भारतीय नागरिक बालक जहां 10-15-20 साल के अंदर में पहुंचा, सने सने तो जहां बुद्धि का विकास वाद खोजने लगता है, जहां कहीं ऐसे ही तत्वदर्शी महापुरुष मिल गए। कृष्ण के अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, भगवान उस ज्ञान को मैं कहां पाऊं, तो बोले किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उसको प्राप्त करो। यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम गास्यसि पांडवा, उनसे जान लेने के पश्चात तुम्हें फिर कभी संदेह नहीं होगा कि रास्ता ये सही कि उधर सही, भजन ये सही कि वो सही, कभी संदेह नहीं होगा, और तुम उस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। स्वयं भगवान सामने खड़े थे, तत्वदर्शी के पास भेजने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कृष्ण ही के भगवान श्री कृष्ण के ही शब्दों में भगवान कृष्ण भी एक तत्वदर्शी हैं, महापुरुष हैं, योगेश्वर हैं, स्वयं योगी हो, अन्य को योग प्रदान कर देने की क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। योग का ईश्वर, योग का मालिक, मालिक वो जो दे सके, और घेरा डाल के बैठा है तो मालिक थोड़ा ही हो, तो पहरेदार है केवल। जानते थे आज का ये अधिकारी मेरे सामने है, भविष्य की पीढ़ी को कहीं संदेह न हो जाए कि भगवान तो गए, अब भजन किसका करें, किससे पूछें, इसलिए उन महापुरुष ने तत्वदर्शी महापुरुष की शरण भेजा। तो जहां वो छोटी छोटी पूजाएं, जहां अगली कक्षा में पहुंचे, तत्वदर्शी महापुरुष के पास टकराव हुआ, साधना मिली, फिर वो शांत एकांत में जहां पूजा करनी चाहिए वहां पूजा करने लगता है। शुरू में तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बताया, किंतु 18 अध्याय में जब पहुंचते अर्जुन ने प्रश्न करना बंद कर दिया, उसकी सारी शंकाएं समन हो गई, जो वो नहीं कर सकता था वो भगवान ने स्वयं बताया। अंत में देखा कि अब पात्रता आ गई है, तब भगवान ने कहा, अर्जुन ईश्वर कहाँ रहता जानते, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, वो ईश्वर सब प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, इतना समीप हृदय के अंदर, तब लोग जानते क्यों नहीं। तब कहते हैं अर्जुन, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर भ्रम बस जीव लोग भटकते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ठीक माना कि ईश्वर हृदय में, तब शरण किसकी जाए। अगले ही श्लोक में कहते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात पराम शांतिम स्थानम प्रापसि शाश्वतम। अर्जुन वे ईश्वर उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ, आधा भाव पशुपतिनाथ, कुछ भाव वैष्णो देवी, कुछ भाव कमक्षा देवी, कुछ भाव मैहर, आप तो बारे आने लीक हो गए, सब जगह भाव ही तो घसीट के ले जाता है, संपूर्ण तो भगवान नहीं मिलेंगे, संपूर्ण भाव से पूरे मनोयोग से लगो, हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले गए तो लाभ क्या? कहते हैं उसके कृपा प्रसाद से तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, तुम रहोगे और तुम्हारा निवास रहेगा। इसलिए वो जहाँ सदगुरुओं से विद्या मिल गई तहाँ वो असली पुजारी होता है, वो पूजा वहां करता है जहां करनी चाहिए, वो हृदय में करता है। और बिनु पद चले सुने बुन काना, जिस जाय दरे मुनि ध्यान, उसका ध्यान धरने लग जाता है। इसलिए वे महापुरुष आरंभ के कट्टर मूर्ति पूजक जब वो कक्षा पास करके अगली में गए तो लौट के पीछे वाली में कोई नहीं बैठता। इसलिए मंदिर जाओ, शुभ है, संस्कार संपन्न सम्मत है, कल्याणकारी है, लेकिन जन्म भर जाना, अगली कक्षा के लिए सोचना ही नहीं, वहीं तक चक्कर मार के भजन की पूर्ति मान लेना, तो धोखा हो जाता है। हर हालत में भगवान एक परमात्मा का करना ही होगा एक दिन, और कोई नहीं, वो एक पड़ाव है, प्राइमरी कक्षा। इसलिए एक सीमा तक वेद्य है, फिर कुछ भी नहीं है, फिर सब छूट जाता है, जहां करना चाहिए वहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध, गुरु नानक, ये महावीर, ये सब उसी कक्षा के उपदेशक हैं, हमारे गुरुदेव भी, और पहले हम मूर्ति पूजक रहे हैं। सारा रामचरित मानस, कहीं प्रश्न, कहीं उत्तर, कहीं आधा उत्तर, कहीं फिर शंका, किंतु उत्तरकांड उत्तर है। सारा सब का निष्कर्ष और समाधान है। अंत में निर्णय देते हुए कहा कि धार्मिक कौन है, तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्म के विषय में बहुत उहापोह में पड़ने की आवश्यकता नहीं, वो विशुद्ध धर्मज्ञ है। धर्मज्ञ माने धर्म का मर्मज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ है, साधारण फटीचर धार्मिक नहीं। धर्मज्ञ, गुणी, ज्ञाता, पृथ्वी में सम्मानित पुरुष और दानदाता, उसके पास देने लायक सामग्री है। नीति निपुण सोई परम शयान, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम शयाना है, बहुत बड़ा समझदार, सुलझा हुआ आदमी, और वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। किसने? कि राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक उन परम प्रभु के चरणों में जिसका अनुराग जग गया हो, मन अनुरक्त हो गया हो। अंत में भगवान शिव निर्णय देते हैं कि शोकुल धन्यो माशुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नरे उपजो विनीत। हे पार्वती, वो सारा कुल भाग्यवान है, सारा का सारा कुल कृतार्थ है, जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग जग गया हो। भगवान शिव तो झूठ बोलेंगे नहीं, ये रामचरित मानस शिव के ही हृदय की उपज है। उनसे लोमस ने जाना, उनसे याज्ञवल्क्य ने जाना, भरद्वाज, तुलसी और आप लोगों तक आई। हम तीर्थ क्यों करने आए? हजारों किलोमीटर से, भारत के कोने कोने से ये भागते हुए हम तीर्थ में क्यों आए? इससे हमें क्या प्राप्त करना है? तो तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दम जप तप मखनाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण, संपूर्ण साधनों का समुदाय, जोग और वैराग्य, ज्ञान में दक्षता, प्राणियों पर दया, सदगुरु की सेवा, जहां लगी साधन वेद बखानी। जहां तक साधनों का वर्णन वेदों ने किया, सब का फल केवल एक हरि की भक्ति। बस इसके द्वारा आप जो निष्कर्ष निर्णय पाओगे निचोड़, वो है एक परमात्मा के चरणों में प्रेम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। सुख सन कादि सिद्ध मुनि नारद, जे मुनि ज्ञान विज्ञान विशारद, सब कर्मत खग नायके हा, करिये राम पद पंकज नेहा। आदि ऋषि सनकादि नारद शुक, जहां तक महापुरुष हुए हैं, सब कर्मत एक, करिये राम पद पंकज नेहा। राम कहो, ओम कहो, भगवान के अनंत नाम हो सकते हैं, लेकिन संबोधन एक ही परम तत्व परम प्रभु का है। बस इसलिए एक परमात्मा के चरणों में जिसकी श्रद्धा जागृत हो गई, वो धर्म को न जानते हुए धार्मिक है। यदि उन प्रभु का न कोई एक परिचायक नाम भाव के साथ जपता है, समर्पण है, तो क्रिया को न जानते हुए क्रियावान है। हाँ, ये प्रश्न अलग है कि उसकी सीढ़ी कौन, लेकिन है सीढ़ी पर।
बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।